کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں. ہاں اس پر یاد ایک بات یاد آ گئی کہ بزرگوں نے منع فرمایا ہے یہ بات کہنے سے کہ مالک کا لفظ استعمال کیا جائے. بڑی صفات کے مالک ہیں, غلط. مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں, انہوں نے صفات دی ہیں, تو یہ مالک نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے حامل ہیں. مالک کہنا ٹھیک نہیں ہے. بڑی صفات کے مالک ہیں اور بڑی خوبیوں کے مالک ہیں, نہیں یہ غلط ہے. بزرگوں نے منع فرمایا ہے. تو ایمان والے ان کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا تھا کہ حضرت ایک مضمون کو زیادہ بیان فرماتے ہیں اور وہ ہے نظر کی حفاظت. میں عرض کرتا ہوں, بات اصل میں یہ ہے, در گلستان ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر ہے, باغ میں ہر پھول کی خوشبو اور اس کا رنگ الگ ہوتا ہے. تو کیا ہم باغ پر اعتراض کرتے ہیں؟ ہم باغ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے اور یہ رنگ, یہ پھول کا رنگ کیوں ہے اور اس کا کیوں ہے؟ اپنا اپنا رنگ ہے اور ہیں سب پھول, تو یہ اعتراضی بیجا اور غلط ہے. اور بزرگوں کا اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ غصے سے منع کرتے تھے. بس ان کے یہاں تعلیم یہی تھی, غصہ مت کرو. اور علماء کو فرماتے تھے غصہ اور اختلاط, دوستیاں, یہ دو چیزیں نہ کرو. یہ علماء کے لیے اضافی چیز تھی. دوستی کے بہت سخت خلاف تھے حضرت, بہت سخت خلاف تھے. فرمایا کہ دوستی, مجھے دارالعلوم میں پڑھتے ہوئے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کمرے میں اور کون کون رہتا ہے, میرے کمرے میں اور کون کون طالب علم اس کو رہائش دی گئی ہے میرے ساتھ, مجھے نہیں پتا تھا. حضرت کا یہ حال تھا, یکسوئی کا, دوستیاں بالکل نہیں. تو فرماتے تھے غصہ مت کرو, دوستیاں نہیں کرو. ہمارے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں, وہ فرماتے تھے زبان کی حفاظت کرو. ان کے یہاں اسی پر زور تھا, زبان کی حفاظت, زبان کی حفاظت کرو. اور حضرت والا کے یہاں نظر کی حفاظت کا تھا کہ نظر کی حفاظت کرو, نظر کی حفاظت کرو. اور میں عرض کرتا ہوں, بات یہ ہے, یہ دور جو ہے نا جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, یہ دور شارٹ کٹ کا دور ہے. ہر چیز کا شارٹ کٹ. آپ دیکھیں ہوائی جہاز آ گئے, پہلے یہی سفر گھوڑوں, خچروں, اونٹوں پر ہوتا تھا, مہینوں ہفتوں لگ جاتے تھے, اب وہ گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہی تو ہے اور کیا ہے. پتیلیوں میں کھانا پکایا جاتا تھا, اب پریشر کوکر آ گیا, لکڑیاں جلا کر, اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے چنی جاتی تھیں لکڑیاں, پھر جلائے, اور کتنی دیر لگتی تھی کھانا پکانے میں, اب منٹوں میں کھانا تیار ہو جاتا. یہ سب شارٹ کٹ ہے, ہر چیز کا شارٹ کٹ آ چکا ہے. تو بھائی وہ خمرے کوہن تو قوی تر ہے, لیکن نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. نئے جام و مینا یعنی شراب پرانی اور جام و مینا نئے, جام نئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ نعمت عطا فرمائی. تو یعنی اگر اس میں حضرت نے شارٹ کٹ بتا دیا تو کیا حرج ہے. اب میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ شارٹ کٹ کس طرح ہے. نظر کی حفاظت, اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ آیت بھی آج گزری, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ایمان والوں سے اے نبی یہ فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ چیز ان کے لیے بہت ان کو پاکیزہ کرنے والی چیز ہے. تو معلوم ہوا نظر کی حفاظت سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اور پاکیزگی سے مراد دل کی پاکیزگی ہے. دل پاک صاف چمکدار ہو جاتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, نورانیت آ جاتی ہے دل میں. ذالک ازکا لہم, اور ازکا یہ جو انگریزی والے کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری, سپرلیٹیو ڈگری ہے یہ. ہم لوگ کہتے ہیں افعال التفضیل, عربی میں افعال التفضیل کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ یعنی اس میں معنی مصدری کی زیادتی پائی جاتی ہے, یعنی بہت زیادہ, اور گناہوں سے بھی دل ان سے بچنے میں بھی دل صاف ہوتا ہے, جھوٹ سے بچنے میں اور دوسرے گناہوں سے بچنے میں بھی دل صاف ہوتا ہے, دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. لیکن نظر کی حفاظت سے جو پاکیزگی دل کو حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے گناہوں سے بچنے کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہوتی ہے. اسی لیے ازکا لگایا, ازکا اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹیو ڈگری لگا دی یہاں. ذالک ازکا لہم, بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والا ہے یہ عمل دل کو. اچھا یہ تو بات طے ہو گئی کہ دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے نگاہ کی حفاظت کرنے سے. پھر آگے فرمایا جس کو پاکیزگی دل کی حاصل ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پر قد افلح من تزکا, بے شک فلاح کو پہنچ گیا وہ شخص جس کا دل پاک صاف ہو گیا. تو دل کی پاکیزگی نظر سے حاصل, نظر کی حفاظت سے حاصل ہوئی, پھر پاکیزگی پر فلاح حاصل ہو گئی. پھر فلاح پر کیا ملے گا, فلاح پر کیا ملے گا؟ قد افلح المؤمنون, اب یہ آ جائیے آج جو آیتیں پڑھی گئیں, قد افلح المؤمنون, یہ ساری صفات آئیں گی فلاح پر. قد افلح المؤمنون, تحقیق کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی کیا ہے نمازوں میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, بے پہلو تہی کرتے ہیں, بچ کے رہتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ترجمہ میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ آیت ہے مکی, تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرفدہ فرماتے ہیں زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں فرض ہوئی اور یہ آیت ہے مکی, لہذا زکوٰۃ کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ تو راجے حضرت فرماتے ہیں, راجے اگرچہ بعض روایات ہیں اس بارے میں کہ زکوٰۃ کے بارے میں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مکی آیت ہے تو زکوٰۃ کہاں سے فرض ہوئی؟ اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرفدہ کے نزدیک, اور دوسری تفاسیر بھی ہیں جن کے نزدیک یہاں پر زکوٰۃ کے معنی تزکیے کے معنوں میں, زکوٰۃ کے معنی بھی یہی ہے, اس سے پاک صاف ہو جاتا ہے, مال پاک صاف ہو جاتا ہے اس کی ادائیگی سے. لیکن یہاں مراد تزکیہ ہے, یعنی دل کی پاکیزگی جو کسی اللہ والے سے کرائی جاتی ہے. یہ خود نہیں ہوتی, یا کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتی, یا کسی ماحول میں بیٹھنے سے بھی نہیں ہوتی. ماحول تھا فرشتوں کا, کتنا پیارا ماحول تھا فرشتوں کا ماحول, سارے کے سارے فرشتے حاضر تھے اور اللہ فرما رہے ہیں سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اللہ فرماتے ہیں تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, اس کے اوپر ماحول کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا. کتنی ایک مجمع تھا فرشتوں کا, سارا کا سارا, وہ سب حضور فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا ہوں تو آسمان تنگ تھا فرشتوں سے, اتنے فرشتے کہ آسمان تنگ تھا. یا اللہ اتنے فرشتے, بتائیے 70,000 فرشتے تو وہاں وہ طواف کر رہے ہیں, یعنی بیت المعمور کا روز آنا, جن ایک دفعہ جن کی باری آ گئی قیامت تک ان کے دوبارہ باری نہیں آئے گی. कोई फरिश्तों की जमात रुकू में है तो वो रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, फरिश्ते ही फरिश्ते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसीर तादाद में फरिश्ते थे, वो सब के सब मौजूद, उनसे कहा गया कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को। इतनी बड़ी तादाद फरिश्तों की सजदे में गिरी हुई है और शैतान खड़ा हुआ है, नहीं मैं तो नहीं करता। अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, ये है माहौल। माहौल का क्या असर हुआ जी? एक आदमी ने अपनी इस्लाह ही नहीं कराई तो माहौल का क्या उस पर असर डालेगा? इस्लाह तो कराई जाती है। हजरत वाला ने एक दफा फरमाया था कि अगर शैतान किसी से मशवरा कर लेता कि मैं क्या करूं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही अपना मुशीर बना लेता और कहता भाई मशवरा दो मैं क्या करूं, अल्लाह का हुक्म है। उसने अपनी राय चलाई और वो मुतकब्बिरीन में से हो गया, धुतकारे हुओं में से हो गया। तो यहाँ मुराद वल्लज़ीनहुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून से मुराद तस्किये का अहतमाम है, जो किसी अल्लाह वाले से तस्किया भी करवाते हैं अपने दिल का, पाकिजगी करवाते हैं, किसी अल्लाह वाले से ही होगी। वल्लज़ीनहुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हाँ, उनकी बांदियाँ और उनकी बीवियाँ, वो तो ज़ाहिर है उनकी बीवियाँ तो उनकी मनकुआ हैं और बांदियाँ उनकी ममलूका हैं, लिहाजा हुकूक़ ज़ौजियत की अदायगी में इनके साथ उनको कोई मलामत नहीं। फ़मनिब तगाव फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, फ़मनिब तगाव वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। हाँ, जो बांदियों और बीवियों को छोड़कर कहीं और से अपनी ज़रूरत पूरी करे, यही सरकश लोग हैं, ये हद से बढ़ने वाले हैं। वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, अमानतों की और अहद की पासदारी करते हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही तो लोग हैं जो वारिस बनने वाले हैं। अल्लज़ीन यरिथून अल-फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, यानी जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस बनेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। तो ये जो है नज़र की हिफाजत पर मिला तस्किया, पाकिजगी दिल की पाकिजगी पर मिली फलाह, यानी क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, और फलाह पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो एक नज़र की हिफाजत से ये सारी मंजिलें होते होते, जिसमें नमाज का खुशू भी दाखिल है और शर्मगाह की हिफाजत भी दाखिल है, अहद की अमानत की पासदारी भी दाखिल है, और तमाम सिफात दाखिल होते होते जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। तो ये एक नज़र की हिफाजत से हो गया, ये है शॉर्टकट, और ये कुरान से साबित हो रहा है। मैं कोई हेर फेर की बात कर ही नहीं रहा हूँ। पूछिए उलमा से कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये मेरी जो बात है ये पूछिए जाके उलमा से कि सही कह रहा हूँ या गलत। एक आदमी नज़र की हिफाजत कर ले, नज़र की हिफाजत पे झोंक दे अपनी कुव्वत को, बस जन्नतुल फिरदौस में पहुँच जाएगा। तरबियत ले ले किसी से, सीखे कैसे नज़र की हिफाजत की जाती है। बैतुल्ला में हमारी हाजिरी थी, हजरत वाला ने हमसे फरमाया देखो शैतान यहाँ पे आके ये नहीं कहेगा बदनजरी करो, वो तो अगर वो कहे सूफी साहब बदनजरी कीजिए तो वो कहेंगे कि तेरा दिमाग खराब है। पता है 4.5 लाख रुपए का हज हो रहा है आजकल, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ऐसे मुख्तलिफ पैकेज हैं, लाखों रुपए का हज हो रहा है। मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि मैं अपने पैसे ज़ाया करूँ बदनजरी करके? और ऐसी उम्र भी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए का उम्र होता है एक आदमी का, तो क्या मेरा दिमाग ख़राब है? अगर शैतान बराह रास्त कहे तो सूफी साहब कहेंगे मेरा दिमाग ख़राब है, पैसे खर्च करके आया हूँ या बदनजरी करूँ। तो वो बड़ा चालाक है, वो कहता है नहीं नहीं आप देखें ऐसा करें, ये जो तवाफ़ की जो जगह है ना, जो तवाफ़ कर रहे हैं लोग, जितना इलाका इन्होंने घेरा हुआ है तवाफ़ की वजह से, मसरूफ़ है जितना इलाका, आप उसको छोड़ दीजिए और फिर उसके साथ बैठ जाइए बस, और बैतुल्ला को करीब से बैठ के देखें, बहुत मज़ा आएगा। तो सूफ़ी साहब इस पर सूफ़ी साहब कहेंगे हाँ 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 ये बात बहुत, इससे बड़ा मज़ा आएगा, बिल्कुल सामने बैठ के देख रहे हैं। ये नहीं पता उन्हें कि जितनी औरतें अगर वो पौन घंटे आधे घंटे बैठ गए, हजारों औरतें उस इतने अरसे में इतने वक्त में गुजर जाएंगी जो बेपर्दा होंगी, उन पर नजर पड़ती रहेगी और ये इन पे लानत होती रहेगी सूफी साहब। लीजिए ये है, ये इस तरह वो अपना वो ऐसे दांव लगाता है कि आदमी चित हो जाए। जब तक किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ ना हो, उसके मकाइद से उसकी चालों से हम खलासी नहीं पा सकते। लिहाजा हजरत वाला ने फरमाया था यहाँ मत बैठो, उधर ऊपर पहली मंजिल में हजरत वाला लेकर हमें बैठते थे तो हम ऊपर से देखते थे, बैतुल्लाह की ज्यारत करते थे, देखते रहते थे, हजरत भी देखते थे, तो उसमें लोग इतने इतने से नजर आते हैं छोटे छोटे, तो उसमें बदनजरी का इम्कान ही नहीं रहता और बैतुल्लाह साफ नजर आ रहा होता है। तो ये चीज़ तो सीखी जाती है, किस तरह आदमी अपनी नज़र बचाए, कहाँ किस तरह बचानी है, कहाँ किस तरह बचानी है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके हैं, तब कहीं जाके इसमें कमाल हासिल होता है नज़र की हिफाजत में। और ऐसा कमाल, मैं एक दफ़ा हजरत वाला के पास मौजूद था, DMC के लड़के और SMC के लड़के और ये कौन सी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी, इसके लड़के ये आते रहते थे हजरत वाला के पास, पांव दबाते थे और बातें भी होती रहती थी। वो कहते थे हजरत वाला आपकी बरकत से हमारी DMC डॉ मेडिकल कॉलेज में एक नज़र ख़राब नहीं होती, SMC में सिम मेडिकल कॉलेज में उस माहौल में रहते हुए एक नज़र ख़राब नहीं होती, सर सैयद यूनिवर्सिटी में एक नज़र ख़राब नहीं होती हमारी। मैं तो कांप के रह गया कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को, ये ऐसे लोगों को अल्लाह सामने करेंगे तो हमारे पास कोई जवाब है कि हम बहुत ख़राब माहौल में रहते थे और हमारे पास कोई यानी हम क्या करते, हम मजबूर थे बदनजरी करने पे। ये सब कुछ वहाँ नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को पेश किया जाएगा जिनकी एक नज़र ख़राब नहीं होती थी। अल्लाह फरमाएंगे बताओ ये भी तो गंदे माहौल में रहते थे, इन्होंने भी तो वहाँ तालीम हासिल की, जब ये बचते थे तो तुम क्यों नहीं बचते थे, तुम्हारे पास क्या उज़र है। डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी में वो हमारे भाई कलीम साहब वहाँ पढ़ते थे, MS उन्होंने किया वहाँ से, अब तो खैर वो कैनेडा में रहते हैं, पहले डेट्रॉइट में वो पढ़ते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं जो यूनिवर्सिटी की जो गुजरगाह है जहाँ से मैं अपनी अपने क्लासरूम तक जाता हूँ, उसके रास्ते में स्विमिंग पूल आता है, सर्दियों में उसका पानी गर्म, गर्मियों में ठंडा, और ऐसे मनाजिर होते हैं जो एक शरीफ आदमी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं, इस मिंबर पर वो बताया नहीं जा सकता। लेकिन वो कहते हैं मेरी एक नज़र ख़राब नहीं होती थी, एक नज़र मेरी ख़राब नहीं होती थी, हजरत वाला ने मुझे तरीके सिखा दिए थे। मैंने कहा मुझे भी बता दीजिए। कहने लगे हजरत वाला ने फरमाया था अपने बाल या तो छोटे रखो या सर मुंडा के रखो, इमामा पहनो इमामा, और कपड़े ज़्यादा उमदा मत पहनना, और तस्बीह हाथ में लेकर जाना, तस्बीह हाथ में रखना। मैं कहने लगे मैं ये चीज़ें करता था मेरी नज़र खुद ही नीचे रहती, एक आदमी तस्बीह पहना हुआ इमाम आसर गंजा और हाथ में तस्बीह और शलवार टर्नर, फिर वो बदनजरी करेगा, उसको लोग कहेंगे अरे तेरा दिमाग खराब है क्या कर रहा है ये। तो वो कहते थे मेरी नज़र खुद ही इन चीज़ों का एहतमाम से मेरी नज़र खुद ही झुकी रहती थी, हजरत वाले ने ये तरीके बता दिए थे, एक नज़र मेरी ख़राब नहीं होती थी डेट्रॉइट यूनिवर्सिटी। बताइए ये लोग हम क्या हिसाब देंगे, मैं तो ये सोचता हूँ हम लोग क्या हिसाब, हमारे पास क्या हिसाब देने को, ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में। अल्लाह, बहरहाल इस एक नज़र की हिफाजत से ये कुरान से साबित हो रहा है कि शॉर्टकट है जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देने वाला अमल है, यकीनन यकीनन इंसान पहुंचेगा जो एहतमाम कर ले। और साथ में ये भी फरमाया وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ عورتوں نے تو ایک بہانہ گڑھ لیا ہے कि हम तो बुरके में हैं बस, और देखती रहे वो मर्दों को देखती रहती है, मर्दों को बेचारों को पता भी नहीं हमें देखा जा रहा है, और वो देख रही हैं। उन्होंने पता नहीं कहाँ से ये मसला निकाला कि हमारे लिए जायज़ है देखना, ये जो अल्लाह का हुक्म है ये कहाँ जाएगा। कि ईमान वाली औरतों से भी कहिए कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखा करें, दीनदार बड़े समझे जाने वाले लोगों के घरों में ये हाल है कि जब उनके यहाँ बड़ी सादगी से शादी हो रही है, अच्छा भाई सादगी से हो रही है, दूल्हा को बिठाया गया ऐसी जगह पर जहाँ कोई झिरी वगैरह थी सामने, उस झिरी से सब बारी बारी औरतें आके देख रही हैं दूल्हा कैसा है, ये है पर्दा, इसको पर्दा कहते हैं। दीनदार समझे जाने वाले घरानों में उनमें भी ये हाल है कि वो इस तरह की डंडी मार लेते हैं, कोई झिरी या सुराख था दरवाजे में या खिड़की में क्या था वो सामने दूल्हा को बिठा दिया ताकि औरतें वहां से आके बारी बारी देखती रहें दूल्हा को, अच्छा भाई नाक तो खड़ी नाक है और फुला है रंग भी है, बस ये तबसरे हो रहे। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म जो है, ये ईमान वाली औरतों से भी कहिए कि अपनी नजरों को नीचे रखा करें, टीवी देख रही है सामने मर्द, वो टीवी पे मर्द आ रहे हैं और वो देख रही, ये अल्लाह का हुक्म नहीं टूटा। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, दीन के नाम पे बेदीनी हो रही है, दीनी प्रोग्राम आ रहे हैं, वो दीनी प्रोग्राम पर जो टीवी पे आते हैं जो लोग, उनको ये नहीं पता कि लाखों औरतें हमें देख रही हैं, अल्लाह का हुक्म टूटेगा, इसका गुनाह किसके सर पर है। भाई इतने, और ये मत कहिएगा फुला आलिम आए थे हम नहीं जा, भाई आप अल्लाह का हुक्म देखिए, अल्लाह का हुक्म क्या है। आलिम, आलिम का अमल उज्जल नहीं है, आलिम का कौल उज्जल है, अमल उज्जल नहीं है उसका। आप अमल से जो हुज्जत पकड़ता है वो गलत पकड़ता है। एक आलिम अगर गलत काम कर रहा हो आप उससे पूछेंगे कि भाई ये तो ये फुला चीज इस तरह है, तो वो भी कहेगा हाँ हाँ भाई है मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसका कौल उज्जत है, अमल उज्जत नहीं है। हमने ये बहाना कर लिया कि फुला आलिम आते हैं टीवी में, बस टीवी देखना चाहिए, वो यानी दीनी प्रोग्राम से आगे बढ़ के फिर ड्रामा और फिल्मों में कहते हैं बस टीवी देखना जाएगा, खुला आलिम टीवी पे आते, उन्होंने यहाँ से वो रास्ता निकाल लिया। बस एक साहब मुझसे खुद कह रहे थे, मैंने वो बिजली का तार जो है डायरेक्ट कर दिया है मीटर से हटा के, मैंने कहा क्यों, कहने लगे हुकूमत इस्लामी नहीं है। तो या अल्लाह, अजीब अजीब शैतान पट्टी पढ़ाता है लोगों को, सबक सिखाता है और अपने तौर पे वो इश्तेहार कर लेते हैं कि वाह भाई हुकूमत इस्लामी नहीं है, बस जायज है मैं बिजली चोरी करना, बिजली का तार डायरेक्ट कर दिया। और वो ऐसे भी नहीं, वो मदरसे के कारी साहब थे, वो कोई आम आदमी भी नहीं थे, कुरान पढ़ाते थे मदरसे, उनको समझाया भाई ऐसी बात नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का हुक्म औरतों के लिए भी है कि वो अपनी नज़रों को बचाएं मर्दों से, नामहरम मर्दों से नीचे रखें अपनी नज़र को, पर्दा करें, पर्दे की हकीकत यही है। हजरत वाला ने एक दफा फरमाया था कि बाजमात नमाज पढ़ना वाजिब है, बाजमात खाना भी वाजिब है, कि भाभी और देवर वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर भी लोगों ने गढ़ लिया एक मसला अपने तौर पे, वो कहते हैं देवर और भाभी एक ही लाइन में बैठे हुए, एक ही लाइन में, यानी वो देवर बैठे हैं उसके बराबर में भाई है, देवर का भाई यानी शौहर उसका औरत का, और फिर वो औरत है उसके बराबर में, तो एक ही लाइन है, इस लाइन में बैठे हैं और सामने मर्द बैठे हुए, इसलिए बेपरवाही तो हो ही नहीं। वो तो क्योंकि कोई देवर जो है यूं करके थोड़ी देख रहा है अपनी भाभी को, बस वो खाना खाते हैं उठ के चले जाते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये कहाँ से मसला गढ़ लिया, न जाने क्या क्या लोगों को, भाई पूछा आपने उलमा से पूछा कि हम ऐसा कर रहे हैं सही भी है या गलत है, एक लाइन में, एक लाइन में क्या अजीब अजीब चीजें हैं जो हमारे यहाँ बस राइज है, वो पूछते भी नहीं है अपने तौर पे, वो बस अपनी राय कायम कर ली उस पर अमल कर रहे हैं। या मैं जाता हूँ तो नज़र नीचे रखता हूँ भाभी से और वो मुमानी और चच्ची और ताई से, मैं नीचे भाई एक कमरे में है वो, इससे पर्दा कहाँ हुआ ये? आप नज़र नीचे रख रहे हैं, वो तो नहीं रख रही नीचे, वो तो देख रही है आपको। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें बदनजरी में दाखिल हैं और हराम है, इससे मना किया गया। और इससे जो खराबियां फैलती हैं मुआशरे में, हम आज देख रहे हैं हम क्या हाल है मुआशरे का। घर छोड़ छोड़ के भाग जाती हैं बच्चियां, जिनसे नाजायज ताल्लुकात हो जाते हैं वो घर घर छोड़ के भाग जाती हैं, यानी हमारी शादी अगर वहां नहीं होगी तो हम नहीं, हम घर छोड़ देंगे। अल्लाह। और फरमाया कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलकिनल्लाह युज़क्की मन यशा। कि ऐ सहाबा, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल ना होता और अल्लाह की रहमत ना होती तो तुम में से किसी एक का कभी भी दिल साफ और पाकीज़ा अल्लाह वाला नहीं हो सकता था। सहाबा को कहा जा रहा है कि तुम में से किसी एक का कभी भी, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, किसी एक का और कभी भी दिल पाक साफ नहीं हो सकता था। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, और बल्कि अल्लाह जिसका दिल चाहते हैं साफ करते हैं, पाकीज़ा बनाते हैं। ये तो हुआ यहाँ तज़किये की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की, दिल की पाक, दिल को पाक साफ बनाने की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की, और दूसरे जो मकामात हैं कुरान करीम में वहाँ हुजूर की तरफ की, ये तारुज़ हो गया। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता वयुज़क्कीहिम। यहाँ पर निस्बत तज़किये की हुजूर की तरफ है। لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه। यहां पर भी वयुज़क्कीहिम की निस्बत हुजूर की तरफ है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और यहां पर अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है, उसी चीज की अपनी तरफ की है, उसी एक चीज की हुजूर की तरफ कर दी गई बात दूसरी जगहों पर, और यहां पर अल्लाह ने अपनी तरफ की है। ये तआरुज़ हो गया कि ये क्या बात है। एक तरफ कहा जा रहा है हुजूर तज़किया करते हैं, दिलों को पाक साफ करते हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है अल्लाह करते हैं। हकीमुल उम्मत थानवी नमरल्लाहु मरकज़हु ने इश्काल हल फरमाया, फरमाया मुज़क्की हकीकी तो अल्लाह ताला ही है, हकीकी पाक साफ करने वाले तो अल्लाह ताला ही है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबब है। बिल्कुल। और इसी आयत से इस्तिदलाल फरमाकर हजरत फरमाते हैं कि शेख को भी बहुत अजीम दखल हासिल है मुरीद की इस्लाम में। यहीं से ये बात पता चली, क्योंकि एक तरफ हुजूर की निस्बत हुजूर की तरफ की जा रही है तज़किये की, और दूसरी तरफ अल्लाह की तरफ की जा रही है, तो हकीकत में तो अल्लाह ही पाक साफ करेंगे, लेकिन अब चूंकि रसूलुल्लाह मौजूद नहीं तो नाइबीन रसूल से काम चलाना पड़ेगा, उनकी खिदमत में जाना पड़ेगा, उनमें से किसी एक की जिनसे मुनासबत हो उससे अपने दिल का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और तज़किया कराना पड़ेगा। और ये शेख को बहुत अजीम दखल हासिल है दिल की पाकीज़गी में। इसी आयत से मसला निकला। और एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला इदफा बिल्लती हिया अहसनु सय्यिअ, बुराई को अच्छाई से दफा कर दो, अच्छाई के जरिए से बुराई को दफा करो, बुराई को बुराई के जरिए से दफा मत करो, बुराई को अच्छाई के जरिए से दफा करो। ये बहुत बड़ा अजीम नुस्खा अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हमारे यहाँ ये होता है कि बुराई को बुराई से दफा किया जाता है, ये गलत, इससे तो फसाद और फैलेगा, इत्तेफाक और इख्तिलाफात और इंतशार, इससे तो और इजाफा होगा, इसलिए इससे मना फरमाया गया। फरमाया गया कि इत्फा बिल्लती हिया अहसनु सय्यिअ, बुराई को दफा करो अच्छाई के साथ। अल्लाह ताला ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک. ہاں استئذان کے مسئلہ آج گزرا, استئذان کا بہت خرابی ہے اس میں. دروازہ بند ہے, اس کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا. بڑے بڑے پاکیزہ معذب سمجھے جانے والے لوگوں کا یہ حال ہے, دروازہ کھولا اندر داخل. بھائی کیوں بھائی, کس سے پوچھا آپ نے, کس سے اجازت دی؟ دروازہ کھٹکھٹایا جائے, اور اگر دروازہ تین دفعہ کھٹکھٹانے کے تھوڑے تھوڑے وقفے سے تین مرتبہ کھٹکھٹانے کے باوجود جواب نہ آئے, چلے جائیے. اور اگر اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں کھول سکتے, جاؤ, وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اگر یہ کہا جا رہا ہے تم جاؤ, واپس ہو جاؤ, ہم تم سے ابھی مل نہیں سکتے, تو آپ واپس چلے جائیے. برا نہ مانیے کہ او میں کیا تھا ملے بھی نہیں. نہیں, کوئی حق حاصل نہیں ہے, شریعت نے اس کو حق دیا ہے کہ نہیں ملنا چاہتا نہ ملے. ہو ہم ناراض ہونے والے کوئی نہیں ہوتے, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ تم چلے جاؤ واپس, ابھی میں نہیں مل سکتا, تو یہ اس کو حق دیا ہے اللہ کا. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی والی چیز ہے اگر تم ایسا کر لو گے اور برا نہیں مانو گے. اس کا مطلب ہے تمہارا دل پاک صاف ہے. اللہ فرماتے ہیں بس چلے جاؤ. اور بعض لوگ ان سے کہا, اچھا کھٹکھٹایا, ان سے کہا جاتا ہے کون, کہ جی میں. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور حضور نے اندر سے پوچھا من, انہوں نے کہا انا میں, تو حضور نے دروازہ آواز پہچان کر دروازہ کھولا, ناگواری کے ساتھ فرمایا انا انا, یعنی میں. یہ کون سا طریقہ ہے, یعنی یہ بتانا چاہتے تھے یہ کیسا طریقہ ہے, تم اپنا نام بتاؤ. بھائی میں کھلا ہوں, میں تو بکری کرتی ہے, آپ بکری ہیں, تو میں یہ نہیں کہنا چاہیے, نام لینا چاہیے, کھلا ہوں. اور اب فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل نہ ہو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اہلها. اپنے گھر میں بھی کبھی ادب یہی ہے, اور دوسروں کے گھروں کا ادب بھی یہی ہے, کہ یا تو اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ کھنکار لیں, حتى تستأنسوا کھنکار لیا آپ, وتسلموا على اہلها, یا سلام کر دیجیے, السلام علیکم میں کھلا ہوں. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ بھی سکھایا گیا شریعت میں. بالکل اسی طریقے سے اپنے گھر میں بعض اوقات بھابیاں ہوتی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, آپ اچانک پہنچ گئے, دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے کمروں کا, گیٹ ہے ایک تو مین گیٹ ہوتا ہے, اس سے آپ اندر آئے تو کمروں کا دروازہ بند نہیں ہوتا, گرمیوں کے دنوں میں کھلا ہی ہوتا ہے عموماً. اب وہ وہاں پہ بھابیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ اپنا منہ اٹھا کے چلے آئے, نہ یہ بھی غلط ہے. جب ایک امکان ہے اس بات کا کہ بھابیاں بیٹھی ہوئی ہوں, نامحرم عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں, تو آپ اندر نہ آئیے, کھنکار لیجیے, وہ سمجھ جائیں گی کہ کوئی مرد آ گیا, وہ اٹھ کے جلدی سے اندر چلے جائیں گے, یا سلام کر دیجیے, السلام علیکم میں آ گیا ہوں, تاکہ وہ اندر چلے جائیں. اب آپ اندر داخل ہوں. ہاں اس طرح کا کوئی امکان نہ ہو, گھر میں کوئی نہ ہو, تو پھر صرف بیوی ہو تو چلے جائیے, سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہو جائیے. اور یا پیروں سے دھمک پیدا کر دیں, پیروں سے دھمک پیدا کر دیں اور کیا کہتے ہیں اس کو, کھنکار لیں. بعض اوقات بیوی بھی اس حالت میں نہیں ہوتی کہ وہ جلدی سے اپنی حالت سنوار لیتی ہے, اپنا جو دوپٹہ وغیرہ چادر وغیرہ پہن لے, جو دو تین سیکنڈ میں جو کام ہو سکتے ہیں شوہر کے استقبال کے لیے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا گھر ہو, بیوی ہو, صرف اس وقت بھی دور سے ہی اس کو ایسا کر لیجئے, کوئی دو تین کام ایسے کر لیں کہ اطلاع ہو جائے, پیروں کی دھمک ہو گئی یا کھنکار لیا, دور سے ہی سلام کر لیا, تاکہ اس کی وہ اپنی حالت درست کر لے. یہ شریعت نے یہ اتنی باریکیاں جو ہمیں سکھائی ہیں نا, یہ اس میں کچھ حکمت ہے, اس کا ہم لحاظ نہیں رکھتے. اب وہ یہ ہے کہ وہ ہینڈل پکڑا, نوب گھمائی اور دراز اندر داخل ہو گئے. بھائی کس نے کہا تھا آپ سے؟ اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں, کیا میں, وہ بیائنی انگریزی کا ترجمہ کرتے ہیں, مے آئی کم ان, وہ کہتے ہیں انگریزی والے, یعنی کیا میں اندر آ سکتا ہوں. حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے ایسی, حضرت کیا میں اندر آ سکتا ہوں, हजरत ने फरमाया यहाँ तक से जो आए आप वो किसी के सहारे से आए थे? सलामत है आपकी टांगे हाथ वगैरह सलामत है, अंदर तो आप आ सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत है, जुमला ही गलत है आपका। हजरत के यहाँ तो एक एक बात पे पकड़ होती थी। उन्होंने कहा हजरत गलती हो गई। फरमाया यूं कहो कि अंदर आने की इजाजत है, यूं कहना चाहिए अंदर तो आप आ सकते हैं, कोई आप मफलूज थोड़ी है, कोई आप माजूर थोड़ी है, आ तो सकते हैं, अल्लाह ने कुव्वत दे रखी है आपको, फिर आप पूछ रहे हैं मैं अंदर आ सकता हूं। ये बिल्कुल बेतुका जुमला है। ये भी कहते हैं बाज लोग, ये बिल्कुल अंग्रेजी वालों की ना, वो तो बेचारे बेवकूफ हैं। उलाइका कल अनाम बलहुम अवल, चौपाया है चौपाए हैं बल्कि उससे भी गए गुजरे, तो आप उनकी नकल कर रहे हैं। तो ये हमें अपने तरीकों को अपनाना चाहिए। हमारे तरीके नूरानी पाकीजा तरीके से बढ़ के क्या तरीके होंगे? ऐसे बारीकियां और इतने प्यारे तरीके, इनके इत्तेबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
बिल्कुल क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसलिए तो ये जुमला ही गलत है। आप तो आ सकते हैं अंदर, ताकत तो है आपको।